इंसान को जिंदा में रखा गया था, जिंदा में डालने की कोशिश क्या कर रहा है? ये टर्निंग पॉइंट पहले क्यों नहीं आया था? मौला साफी इमाम को क्यों जेल में डाला? उनसे पहले वाले आइम्मा को क्यों जेल में नहीं डाला? थोड़ा सा यहाँ पर एक बारीकी, ये जो दुश्मन इमाम के सामने है, ये वो दुश्मन है जिसको अमीरुल मोमिनीन ने अपनी रिवायतों में खतरनाक तरीन दुश्मन ताबीर किया। जब मौला आगे के हालात की पेशनगोई फरमा रहे थे तो इमाम ने इन खुलफा के बारे में ये बताया था और फरमाया था ये होशियार तरीन और मक्कार तरीन लोगों में से चंद लोग हैं जो इमाम के सामने हैं, ये हारून रशीद जैसा आदमी। और ये लोग अगर मैं और आप आज की दुनिया में किसी पॉलिटिशियन को इनके बराबर में खड़ा करें, चूंकि मेरा खुद स्पेशलाइजेशन पॉलिटिकल साइंसेज रहा है, तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि इतने मक्कार पॉलिटिशियन आज की दुनिया में शायद आपको ना मिले जितने ये लोग मक्कार थे। हम लोग चूंकि तारीख को नहीं जानते तो हमें यूं लगता है जैसे आज के जमाने के पॉलिटिशियन तो बहुत मक्कार होते हैं, उस जमाने के नहीं होते होंगे। नहीं, वो बहुत पाए के मक्कार लोग थे, वो मासूम इमाम के सामने थे, ये पाए के मक्कार लोग थे। क्यों इसने इमाम को जहर नहीं दिया शुरू में, क्यों जेल में डाला? बोला पांचवें इमाम को जहर दिया गया था, बोला छठे इमाम को जहर दिया गया था, ये भी जहर दे देता है, इसने ये नहीं दिया जहर, क्यों? एक बुनियादी वजह है, हारून रशीद बहुत मक्कार बादशाह, और इस हाकिम ने ये देखा कि हमने एक इमाम को शहीद किया, अलबत्ता उससे पहले बनी उमैया के दौर में शहीद हुए थे, दूसरे इमाम को शहीद किया, एक को तहकीक किया, दूसरे को जहर दिया, तीसरे को जहर दिया, इस तरह किया। इसने एक बात देखी मुझे कि हम इनकी शोहरत का मुकाबला नहीं कर पा रहे, इनकी शोहरत बढ़ रही है। हत्ता ये जो बनी अब्बास हुकूमत पर आए थे, ये भी अहले बैत के नाम पर आए थे, ये भी अहले बैत के नाम पर आए थे। बनी अब्बास का असल नारा यही था कि हम उसको हाकिम बनाएंगे जिस पर अहले बैत राजी होंगे। लोगों ने इस वजह से इनका साथ दिया। अब ये हुकूमत पर जब आ गए तो इन्होंने देखा अच्छा मौका है, पहले बैत अथार अलैहिस्सलाम से बदला ले और इनको खत्म करें, जहर दिया, शहीद कर दिया। लेकिन हारून रशीद ने एक बात देखी, वो कि हम जहर दे देकर शहीद करते भी रहे, हमारा मामला हल नहीं हो रहा। अब वो क्या चाहता था? अब वो ये चाहता था कि इस मुश्किल को एक और तरह से हल करें। और उसके बेटे ने जो वली अहद बनाया वो भी वो मक्काराना तरीका था जिससे इसका बाप हल करना चाहता था। वो क्या चाहता था? कोई चाहता था हम लोगों को सामने जहर देने वाले हाकिम बनकर ना आए, हम लोगों के सामने इस तरह से आए कि हमारे इनके ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं। बनी अब्बास की सलाह पर आए थे और रिजा ले आले मोहम्मद जिस पर अहले बैत राजी हो। लोगों ने उनसे मुतालबा करना शुरू किया कि भाई तुमने नारा लगाया था जिस पर अहले बैत राजी हो, ये अहले बैत ये राजी नहीं है। जवाब क्या था बनी अब्बास के पास? एक को जहर दो, दूसरे को जहर दो। हारून रशीद तक बात पहुंची, इसे देखा जहर देने से मामला खत्म नहीं हो रहा, लोगों के अंदर वो सवाल बाकी है कि जिसके ऊपर राजी होने का नारा लगाया था वो लाओ की रिजायत। इसने इमाम मुसा कादिम अलैहिस्सलाम के जरिए चाहा कि ये रिजायत का मामला मैं जबर करके हल करूं, इसे जहर नहीं दिया शुरू, इसने इमाम को जिंदान में रखा। और जिंदान में रख के क्या चाहता था? बस इतना चाहता था, हमारे पास रिवायात मौजूद है इंसान मोहतरम, अगर आपके पास आज की शब में कहीं मौका मिले दो किताबों में से किसी एक किताब तक अगर आप पहुंच सकें, एक किताब शेख अब्बास कुमी की मुंतहदामान जिसका उर्दू में तर्जुमा हुआ अहसनुल मकाल नाम करके, इंग्लिश में भी उसके एक्सट्रैक्ट्स मौजूद हैं, और दूसरी किताब अल्लामा ज़ीशानदर जवादी साहब की नुकूश इस्मत बेहतरीन किताबों में से हैं जो उर्दू के अंदर मौजूद है, इंग्लिश में भी उसके एक्सट्रैक्ट्स मौजूद हैं, और ये बहुत सिंपल है। इसके मुकाबले में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड किताबें भी मौजूद हैं जिन्होंने पॉलिटिकल एनालिसिस किए हुए उस दौर की, लेकिन ये बहुत सादा था। तो जब आप जाके देखेंगे उसमें तो आप सादा सी एक बात देखेंगे कि हारून रशीद बस इतना चाहता था कि मौला इसके दरबार में जाए और अपनी रिजायत का इजहार कर ले और जाकर एक दफा कह दे कि मैंने गलती की, ये जुमला निकलवाना चाहता। इस जुमले के बाद इसके पास क्या मौका होता? इसके बाद ये मौका होता कि वो जिस वक्त चाहता इमाम को शहीद करता और लोगों को कहता कि उन्होंने बगावत की थी, मैंने उस बगावत के जुर्म में इमाम को शहीद किया। इमाम ने तहम्मुल फरमाया, इमाम ने कहा नहीं मैं ही नहीं करूंगा और कभी भी उसके सामने जाकर ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा। इस खातिर इमाम सालों के ऊपर जेल के अंदर मुकैद रहे और जो दुश्मन था ये कितना मक्कार दुश्मन था। एक वाक्य मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, ये वाक्य यकीनन आपने पहले भी सुना होगा, ये हारून रशीद का वाक्य है, लेकिन मामून रशीद उसके बेटे ने बयान किया है। हारून रशीद और मामून रशीद ये दोनों बादशाह कितने बड़े बादशाह थे, अगर आपने थोड़ा सा मसलन हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की तारीख को देखा हो तो जैसे अकबर बादशाह का नाम बहुत बड़ा बादशाह होने के नाते मशहूर है, मसलन ईरानियों में शाह अब्बास नाम करके एक बादशाह होता था, बहुत बड़ा नाम उसका मशहूर होता था। अब्बासी खुलफा में इन दो से बढ़कर कोई बादशाह नहीं था, बहुत ताकतवर थे। ताकतवर होने के नाते इनकी सियासत बहुत ज्यादा मक्कारी पर मुश्तमिल थी। अहले बैत अत्थार अलैहिस्सलाम के नाम पर हुकूमत आए थे, उनसे दुश्मनी कर रहे थे और पब्लिक को धोखे में रखना चाहते थे। तो वाक्य बयान करता है मामून रशीद, कहता है मेरा बाप एक दफा मदीने गया, वहां पर उसने साथ में इमाम को मिलने का इरादा किया। इमाम दरबार तशरीफ लाए, वो कहता है कि जब भी कोई दरबार में आता था तो उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो अपनी सवारी को बाहर छोड़े और वहां से चलता हुआ पैदल मेरे बाप के दरबार के सामने तख्त के सामने खड़ा होता और वहां जाके सलाम करता, और एक तरफ एक बेटा बैठा होता था, दूसरी तरफ दूसरा बेटा बैठा होता था, तो कहता था हम तीनों बैठे रहते थे, वो सलाम करता था और उसके बाद मेरा बाप जिस तरफ चाहता था उसको कह देता था कि यहां जाके बैठ जाओ, जो भी आता था ये प्रोटोकॉल था उसका। कहने लगा कि ऐलान करने वाले ने ऐलान किया, मामून रशीद बता रहा था कि ऐलान किया दरबार में कि इमाम का नाम लिया कि इमाम तशरीफ लाए। तो कहते हैं जैसे ही ऐलान हुआ तो प्रोटोकॉल ये था कि मेरा बाप कहता था उनको अंदर आने दो, वो अंदर आएंगे और मेरे बाप के तख्त के सामने खड़े होंगे, लेकिन जैसे ही इमाम के आने का ऐलान हुआ मेरा बाप अपने तख्त से खड़ा हो गया, तख्त से खड़ा हुआ। कहने लगा जैसे ही मैं वो खड़ा हुआ पूरा दरबार खड़ा हो गया, जब वो खड़ा हुआ पूरा दरबार खड़ा हुआ तो उसने कहा कि उनसे कहो कि वो अपनी सवारी पर बैठे, मैं उनको लेने आ रहा। दरबार से निकला, इमाम की सवारी के पास पहुंचा, इमाम की सवारी के रस्सी को अपने हाथ में पकड़ा, इमाम ने उतरना चाहा तो इमाम से कहा कि आपको मैं अर्ज करता हूं कि आप बैठे रहिए और मेरे मैं आपकी सवारी पकड़ के दरबार के अंदर लाऊंगा। रस्सी पकड़ के दरबार के अंदर तक लाया, दरबार के अंदर तक लाने के बाद इमाम को अपने दरबार में सवारी से उतारा, इमाम को बहुत अच्छी जगह बिठाया, खुद उनके सामने बैठा और देर तक इमाम से गुफ्तगू करता रहा और अपने बेटों से कहा कि इनकी ताज़ीम करो इंतहाई इज्जत के साथ। फिर जब इमाम रुख्सत होने लगे तो खुद बाहर तक गया उनको खुदा हाफिज़ कहने के लिए और खुदा हाफिज़ कह के वापस आया। तो मामून रशीद ने कहा कि मैंने अपने बाप को जिंदगी में किसी का एहतराम करते हुए ऐसे नहीं देखा जिस तरह इसने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का एहतराम किया। अब आप तसव्वुर कीजिए जब ये काम हुआ होगा तो दरबार में और शहर में इमाम के बारे में क्या बातें मशहूर हो गई होंगी कि भाई खलीफा इमाम की रिस्पेक्ट ऐसी करता है जो उसने जिंदगी में किसी की नहीं की। मामून रशीद जो बेटा है उसने ये देखा कि ये जो मामला हुआ इससे हमारी पोजीशन कमजोर हो गई। मामून रशीद भी सियासतदान था, उसने कहा भाई इससे तो हमारी पोजीशन कमजोर हो गई क्योंकि वो इमाम का दावा कर रहा है, इमाम होने का दावा कर रहा है और हमने मेरे बाप ने बादशाह और खलीफा होते हुए उसका ऐसा एहतराम कर डाला तो ये तो पूरी आबादी को जैसे ये बता दिया कि भाई इमाम यही है। तो कहने लगा कि मैंने जब ये मौका देखा तो मैं अपने बाप के पास अकेले में गया और उसने कहा कि मैं वो वाहिद आदमी था जो अपने बाप से खुल के बात कर सकता था और कोई बात भी नहीं कर सकता था। तो ये सवाल सबके जहन में था कि इसने क्यों ऐसा किया लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी। कहने लगा मेरे अंदर हिम्मत थी, मेरे उससे ताल्लुकात ऐसे थे कि मैं कर सकता था। तो कहने लगा मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। तो उसने कहा पूछो। तो उसने यही सवाल सामने रखा कि आपने उनका एहतराम इतना ज्यादा किया कि शहर के अंदर उनका नाम बहुत मशहूर है और आपने इस तरह से एहतराम करके हमारी सियासी पोजिशन जैसे खराब कर दी। एक बात मामून ने और नोट की और ये बहुत अजीब बात है। मामून रशीद कहता है कि जितना एहतराम मेरे बाप ने इनका दिखाया इतना एहतराम जिंदगी में मैंने किसी का नहीं देखा था, लेकिन मैंने एक अजीब बात देखी। कहने लगा कि जिसका वो एहतराम नहीं भी करता था ना उसको इनाम में 10,000 दे देता था। जिसका एहतराम नहीं भी करता था उसको बुलाया चलो खुद आ जाए कहीं पर भी बिठा दिया, जब वो जाने लगता था तो उसको पैसे में 10,000 दे देता था। पांच दस हजार कोई मसला नहीं था। कहने लगा कि इसने इतना एहतराम किया इनका और इनको दिए 700। तो क्या मतलब, मैं हैरान था कि भाई ये जो 700 दिए ये तो इसने जो गरीब तरीन था उसको भी नहीं दिए थे और एहतराम इसने बादशाह की तरह किया। कहने लगा मैं रात को मिला अपने बाप से और मैंने उससे मसलन तन्हाई में उससे पूछा कि आपने क्यों किया, तो उसने कहा कि ये जो थे ये इमाम है। हारून रशीद कह रहा है कि ये इमाम, तो उसने कहा कि अगर ये इमाम है तो हम कौन है, ये इमाम है और हम दुनिया के सामने कहते हैं हम खलीफा है तो हम कौन है। फिर दूसरी बात ये कि आपने सबको इनाम दिया इनको इनाम भी नहीं दिया। तो उसने दोनों बातों के जवाब में दो जुमले बोले और ये दो जुमले बड़े खतरनाक हैं। ये किसके जुमले हैं, ये किसी सादा आदमी के जुमले नहीं है, ये अपने जमाने के ताकतवर तरीन बादशाह के जुमले हैं। यानी ये इतना खतरनाक बादशाह था कि रोम का बादशाह भी इसके सामने स्टैंड नहीं कर सकता था। तो ये जवाब में क्या कहता है, कहता है अगर मैं इनको इनाम दूंगा तो ये उसकी शमशीरें खरीद कर मेरी हुकूमत का खात्मा कर देंगे, अगर मैं इनको पैसा दे दूंगा ना तो ये उसकी शमशीरें खरीदेंगे, ये कभी भी मेरी हुकूमत बाकी नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, ये इमाम वो नहीं है जो अपनी इबादतों में मशगूल रहे और माशरे में जुल्म होता रहे और वो जालिम को चैलेंज ना करे, ये नहीं होगा, ये फौरन चैलेंज करेंगे। उसके बाद इसने कहा ये इमाम और दूसरी तरफ से कहा कि शमशीरें खरीदेंगे, तो मामून रशीद ने कहा कि फिर हम कौन है, यानी इसका मतलब ये हुआ हम गासिब हैं, इमाम ये है शमशीरें खरीदेगा और हमें मारेगा तो हम गासिब हैं फिर इसका मतलब है। तो हारून रशीद ने एक और हकीकत बयान की, उसने कहा कि ये हुकूमत मेरी है और अगर तुमने भी इसको टेढ़ी आंख से देखा तो तुम्हारी आंखें निकलवा दूंगा। कहने लगा ये हुकूमत मेरी है, अगर इसको टेढ़ी आंख से देखा तुम्हारी भी आंखें निकलवा दूंगा। मतलब ये दुनिया है, अगर अहले बैत अतहार को सिर्फ इज्जत चाहिए होती ना, जुल्म के खिलाफ ना बोलना होता तो कोई उन्हें जेल नहीं डालता, कोई उनके दरवाजे पे हमला नहीं करता, कोई करबला ना होती अगर जुल्म के खिलाफ ना बोलना होता। इन्होंने मुकाबले किए, ये जो इमाम 10 साल से ज्यादा जेल के अंदर रहे, बदतरीन जेलर्स की जेलों के अंदर रहे, इस वजह से थे, ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करते थे। ये मजलूम का साथ छोड़ दे ये इनकी लुगत में नहीं था, जालिम का मुकाबला करते थे। इमाम को जिंदान में रखा गया था, क्या ये बात अहले बैत के मानने वालों को पता नहीं थी कि इमाम जिंदान में था? हाँ पता था। आपने कभी अपने आप से ये सवाल क्यों नहीं किया कि अहले बैत के मानने वालों ने उनको जिंदान से आजाद क्यों नहीं करवाया? यही सवाल सही सवाल है या नहीं है? सवाल कि अहले बैत के चाहने वाले जो इतनी तादाद में रह रहे थे इसी बगदाद के अंदर, बगदाद के अतराफ के इलाकों में, नजब से बगदाद से फासला कितना है, कितना फासला इन तमाम अतराफ का, ये अहले बैत के चाहने वाले इमाम को आजाद क्यों नहीं करा रहे थे? फिर मैं अगला सवाल ये पूछता हूँ, जब इमाम मजलूम को उनके लाशों को पुल पर रखा गया तो जनाजा उठा था या नहीं उठा था? जनाजा उठा, लोगों ने मजलूम समझते हुए एक लाश को उठाया था, जितने लोगों ने लाशा उठाया था ये जिंदान तक क्यों नहीं आया आजाद कराने के, ये सवाल है या नहीं है? ज़हन में आ गया कि भाई ये सवाल क्यों नहीं किया ऐसा? तो हमें अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के चाहने वालों की तरफ से एक कोताही और अहले बैत की एक मजलूमियत समझ में आती है। नाम लेने वाले बहुत थे लेकिन कोई इतनी ताकत दिखाए कि हारून और रशीद के जेल पर हमला करके इमाम को आजाद करा ले, हाँ ये लोग कम थे। तो फिर मैं क्या कहूँ इसको? मैं इससे कहूंगा कि ये जो करबला थी ना ये चल रही थी, रंग बदले हुए थी, मजलूमियत जारी थी, इसकी टाइप चेंज हो गई थी और ये वो मुश्किल है जिसके अंदर अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा।